चलिए अगली कहानी पढ़ते हैं, वो भी बहुत दिलचस्प है और उसका नाम है अल्लाह अकबर, नेकी के सफीर। स्टोरी है अल्लाह अकबर। हमारा रब हम पर हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। ये इसकी रहमत ही है कि इसने हर फासिकों, काफिरों, मुशरिक के लिए तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है। ये जुमला लिख लें, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत यह है कि उसने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। इसकी रहमत की बरखा हर शख्स पर बरसती है। तौबा का दरवाज़ा हर एक के लिए हर वक्त खुला है। इस बूढ़े की तरफ देखिए, बुढ़ापे ने इसकी कमर टेढ़ी कर दी है। वो डोलता, डूबता, कांपता, घिसटता बारगाहे रिसालत में चला आ रहा है। नबी रहमत सहाबे कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे, वह अपने पाँव घसीटता हुआ आपके पास आ ही गया। इसकी बूढ़ी आंखें पलकों के बोझ से झुक गई थीं। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा है, अल्लाह के रसूल, ऐसे आदमी के बारे में बतलाइए जिसने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गंवा दी। कोई गुनाह इसने नहीं छोड़ा, हर सगीरा और कबीरा गुनाह का इर्तकाब कर डाला। अगर इसके गुनाह ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों में तकसीम कर दिए जाएं, तो वह इन सब को हलाकत के घड़े में फेंक दें, क्या ऐसे शख्स के लिए भी तौबा की गुंजाइश है? आज भी दुनिया में ऐसे कितने होंगे। हम ऐसे लोगों को एक बुरा सा नाम दे देते हैं, शराबी कबाबी, गुनाहगार, मुनाफिक, खराब लोग, करप्ट। नहीं, देखिए, जिस वक्त दिल में ख्याल आ जाए, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र उठाई, उसे देखा, बुढ़ापे की वजह से इसकी कमर दोहरी हो गई थी। अब वो ज़िंदगी की आखिरी सांस गिन रहा था। ज़माने और ज़िंदगी के हालातों हवादिस ने इसे हिला कर रख दिया था। शहवत व लज्जत की ज़िंदगी ने इसे हलाक कर दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ़त फरमाया, इस्लाम कबूल करते हो? इसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व अन्नक रसूलुल्लाह। कितना अच्छा लगा होगा अन्नका कहते हुए। आज आप और मैं तो नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी वहाँ सामने उसके मौजूद थे। आपने फरमाया, जाओ नेकी के काम करो और गुनाहों को छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। बूढ़े ने कहा कि अल्लाह ताला मेरी सारी स्याहियाँ और काले करतूत माफ़ कर देगा। आपने फरमाया, हाँ। वो खुशी से झूम उठा और चिल्लाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह की बड़ाई बयान करता वो उल्टे पाँव वापस चल दिया और धीरे धीरे सहाबे कराम की निगाहों से उछल हो गया। यह हदीस अल मुजमुल कबीर, तबरानी की जो किताब है उसमें है, 7235। तो आपको मुझे इससे क्या मिला? किसी को मायूस ना करें, कभी जजमेंटल ना हो, कभी किसी को बुरा ना कहें, बल्कि ऐसे लोग जो ज़िंदगी भर गुनाह चख चुके होते हैं ना, बिलीव मी, ये बेहतरीन बर्तन है जिसमें आप खैर डाल सकें। गिल्ट होता है ना, ज़िंदगी ज़ाया कर दी, टूटे होते हैं। और याद रखिए, गुनाह एक ख़ास हद तक ही मज़ा आता है, उसके बाद उससे भी बोरियत होने लगती है बंदे को। तभी तो हर चंद सालों बाद नए किस्म के गुनाह नहीं ईजाद हो रहे। पहले लड़का लड़की दोस्ती कर लें, शादी से पहले के ताल्लुक, वही बहुत था। ऐसा ऐसा चलते चलते गए उसमें गए, तो फिर लड़कों के लड़कों से ताल्लुक, लड़कियों से लड़कियों के, कहीं जानवरों से। यानी गुनाह इन्वेंट होता है, हर चंद सालों के बाद नए नए गुनाह इन्वेंट हो रहे हैं। और अब उससे भी बोर हो गए, तो अब उससे भी और अजीबोगरीब चीज़ें हैं। तो कभी किसी को मायूस ना करें। मुझे आपको तो इस कहानी पे अमल इस तरह करना चाहिए कि ढूंढिए जाकर ऐसे लोगों को, ढूंढें कि जिनकी ज़िंदगी वाकई किसी ना समझी में गुजरी। और बिलीव मी, मैं एक ऐसी जगह पे थी, मैं नाम नहीं लेती, लेकिन ये बता दूं कि मुस्लिम मुल्क था, और कोई प्रोग्राम, कोई बात हुई दर्स की, और बहुत मॉड स्कॉट औरतें थी वहाँ, अल्ट्रा मॉड, यानी बहुत, जिस तरह आप कह सकते हैं कि क्रीम क्राउड था उस सिटी का, उस शहर का, उस मुल्क का। तो बाद में सवाल जवाब शुरू हुए, तो जिस आंटीज टाइप की खवातीन ज़्यादा थी, तो कहने लगी, अब ये तो आपको पता है ना कि अक्सर मर्द जिना करते हैं और अक्सर शराब पीते हैं। तो मुझे लगा मैंने गलत सुना है, लेकिन बिलीव मी, मुस्लिम मुल्क की मुस्लिम औरत ने, सबके बीच में कोई 100+ खवातीन होंगी, ये गवाही दी कि आज के दौर में मोस्टली मर्द दे ड्रिंक और मोस्टली दे हैव सम रिलेशनशिप विद एनीवन। मुझे यकीन नहीं आया, फिर मैंने समझा कि ये हैं ही उसी सोसाइटी से हैं, ये हैं उस कैटी के लोग के जिधर वाकई ये चीज़ें अब आम हैं, कहीं बिजनेस के नाम पे, कहीं आउटडोर एक्टिविटीज़ के नाम पे, या क्या होगा। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर ये जुमला मुझसे किसी ने वेस्टर्न कंट्रीज में रहकर वेस्ट के रहने वाले किसी के बारे में कहा होता तो मैं इतनी हैरान ना होती, लेकिन मुझे हैरत हुई। तो मत सोचिए कि आप यहाँ बैठे हैं तो बहुत बुरे हैं, तो अपने मुल्कों में बड़े नेक हैं, जिसने गुनाह करना है उसने हरम के पास जाके भी कर लेना है। ज़रूरत इस बात की है कि आप लोगों को उम्मीद दिलाएं। ये देखिए, इस पूरी बुक से आपको एक चीज़ मिल रही है, करीब रहने वालों को, कभी दोस्त, कभी बेटी, कभी बेटा, कभी बीवी, कोई ना कोई ज़रूर उसके दिल के तारों को छेड़े। आपको मुझे दूसरों की फिक्र है, अपनों की करें। और इंशाल्लाह जब हमारी आवाज़ में नरमी और हमदर्दी होगी, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, दर्दमंदी होगी, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह तासीर भी पैदा करेगा। एक बहुत ही खूबसूरत वाक्या आपने कई बार हदीस में सुना होगा, वो भी यहाँ आइए स्टोरी की सूरत में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला माँ से भी ज़्यादा मेहरबान है। नेकी के सफ़ीर, पेज 91। स्टोरी का नाम, अल्लाह माँ से भी ज़्यादा मेहरबान है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो से ये बात हमें मिलती है। कहते हैं कि एक जंग में रसूलुल्लाह की खिदमत में चंद कैदी लाए गए। इनमें से एक खातून भी थी। इसकी बड़ी अजीब हालत थी। क्या कहते हैं, यानी उसकी हालत देखिए कि किस खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं। और आप इन अल्फाज के अंदर से उस माँ की बेताबी देखिएगा जो अपने बच्चे के लिए उसकी महसूस हो रही है। कहते हैं कि इज़ा वजदत सबीयम फ़ी सबीयिन अखजत हो फल सकत हो भी बतनीहा वारदात हो। कैदियों में से जिस बच्चे को भी पाती, इसे अपनी गोद में ले लेती और इसे अपने जिस्म से चिमटाकर दूध पिलाने लगती। यानी माँ अपने बच्चे की जुदाई में इतनी बेचैन थी कि वो अपने बच्चे की जुदाई में दूसरों के बच्चों को भी दूध पिलाने लगती। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खातून की बच्चे के लिए ये बेचैनी देखी तो सहाबा कराम से दरियाफ्त किया। अब ये सवाल आप भी हाईलाइट कर ले, अतरऊना हाजिल मरअता तारहतन, अतरऊना, क्या तुम देख रहे हो, हाजिल मरअता, इस औरत को, क्या ये मुमकिन है, क्या तारहतन वलदहा फिन्नार, कि ये अपने बच्चे को आग में फेंक देगी। यानी ये आज इस बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी, धूप में उसके कदमों का जलना बर्दाश्त नहीं कर सकी, कल कोई कह दे कि ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक दे तो तुम मानोगे? सहाबे कराम ने अर्ज़ किया, हरगिज़ नहीं, ये कभी अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी, आग में नहीं फेंक सकती। उस पर आपने फरमाया, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाजिही बिवलदिहा। याद रखो, अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस खातून से कहीं ज्यादा रहम फरमाने वाला है। ये सही बुखारी की रिवायत है, अल अदब, और 5999 नंबर, और सही मुस्लिम में भी है 2754। और सहाबे कराम ने अल्लाह के नबी से ये बात बहुत दफ़ा सुनी। तो फिर आपका मेरा क्या काम है? ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। कभी लोगों को मायूस ना करें, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। ख़ास तौर पे आप देखिए, जब जर्म्स फैले हों, जब चारों तरफ बुराई के फितने फैले हों, तो कम अज़ कम लोगों को इस बात की उम्मीद तो दीजिए कि वो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत में होंगे। सुबहान अल्लाह, वो कैसे मरीज़ हैं। पेज 93, नेकी के सफ़ीर। इस वाक़े के रावी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल अरेफ़ी हैं। कौन हैं वो जिन्होंने ये किताब लिखी? वो बयान करते हैं कि मैं हस्पताल में एक मरीज़ के पास से गुज़रा। इसकी उम्र 40 साल के लगभग थी। वो बहुत खूबसूरत कद-ओ-कामत और बड़े दरख्शां चेहरे वाला आदमी था। बज़ाहर हशाश बशाश नज़र आता था, लेकिन इसका सारा जिस्म मफलूज और बेहिस हो चुका था। ज़रा भी हरकत नहीं करता था, सिर्फ सर और गर्दन थोड़ी बहुत हरकत करते थे। आप कुल्हाड़े के वार से इसके बदन के टुकड़े टुकड़े भी कर दें, तब भी इसे कुछ पता नहीं चल सकता था। वो बिल्कुल बेहिसो हरकत बिस्तर से चिमटा हुआ था। इसे पेशाब पखाने का पता भी न चलता था। जब इसके पास से बदबू आती तो इसकी देखभाल करने वाले इसका लिबास बदल देते थे। मैं इसके कमरे में दाखिल हुआ तो टेलीफोन की घंटी बज उठी। इसने मुझे चिल्लाकर आवाज़ दी और कहा, जनाब ज़रा फ़ोन पकड़िए, कहीं बंद न हो जाए। मैंने रिसीवर उठाया और इसके कान से लगा दिया। वो बात करने लगा, मैं वहीं ठहर गया। इसने अपनी बात मुकम्मल की तो बोला, जनाब ये रिसीवर इधर रख दीजिए, यानी वो खुद मूव भी नहीं कर सकता। मैंने रिसीवर रख दिया, फिर पूछा आप कब से इस मर्ज़ में मुब्तला हैं? इसने बताया मैं 20 साल से इस मर्ज़ का रोगी हूँ। डॉक्टर रफ़ी दूसरा वाक़या बयान करते हैं कि मुझे एक दोस्त ने बताया कि वो हॉस्पिटल में एक कमरे के पास से गुज़रा, वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। मैंने कमरे में जाकर देखा एक मरीज़ बड़ी ऊंची आवाज़ से आहोजारी कर रहा था। इसके चिल्लाने की आवाज़ें इस कदर खौफनाक थी कि दिल फट जाए। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं इसके पास गया, इसका जिस्म फालिज की वजह से बेहिस हो चुका था। वो इधर उधर देखने की बड़ी कोशिश करता लेकिन इसकी सारी कोशिश राय गां जाती। मुझे बड़ा तरस आया, पूछा ये मरीज़ चीखो पुकार क्यों कर रहा है? इसने बताया फालिज की वजह से इसका सारा जिस्म बेहिस हो चुका है, इसकी अंदरियों में ख़राबी है। जब भी कोई चीज़ खाता है इसके बाद इसकी यही हालत होती है, इसे कोई चीज़ हजम नहीं होती। मैंने कहा आप इसे स्कील खाने मत खिलाएं, गोश्त और चावलों के करीब भी ना फटकने दें। नर्स ने कहा हम इसे सिर्फ दूध पिलाते हैं, वो भी मुंह के ज़रिए नहीं बल्कि नाक के ज़रिए, नालियों के वसीले से पेट में पहुंचाते हैं। इसे हजम करने के लिए भी इसे इतने ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। डॉक्टर रफ़ी बयान करते हैं कि मुझे मेरे एक और दोस्त ने बताया कि वो भी एक फालिज ज़दा मरीज़ के कमरे के पास से गुज़रा, वो ज़रा भी हरकत नहीं करता था, तकलीफ़ की वजह से चिल्ला भी रहा था। मैं इसके पास गया, इसके सामने रहल पर कुरान पाक रखा हुआ था, मैं इसे देखता रहा। जब वो दो सफ़े पढ़ लेता तो दोबारा फिर इन्हीं दो सफ़ों को पढ़ने लगता, इसमें इतनी सकत नहीं थी कि सफ़ा उलट सके। अल्लाह अकबर। इसके पास कोई आदमी भी ना था जो इसकी मदद करता। जब मैं इसके सामने खड़ा हुआ तो इसने इल्तिजा की, जनाब ज़रा सफ़ा तो पलट दीजिए। मैंने कुरान मजीद का सफ़ा पलटा तो इसका चेहरा खिल उठा, इसने अपनी नज़रें कुरान पर गाड़ दी और पढ़ने लगा। मैं इसके सामने फूट फूट कर रोने लगा। मैं बड़ा हैरान था कि यह अपाहिज है, लेकिन कुरान मजीद पढ़ने के ज़ौके मुकद्दस से किस कदर माला माल है। इसके बरक्स एक हम हैं सही सलामत, हट्टे कट्टे हैं, लमछड़ों की तरह चलते फिरते रहते हैं, और कुरान करीम की तिलावत से इस कदर गाफिल है कि हमें भूले से भी कलाम पढ़ने का ख्याल नहीं आता। डॉक्टर रफ़ी के तीसरे दोस्त अब्दुल्ला ने एक वाक़या बयान किया। वो किसी हस्पताल में एक आदमी के पास गया, इसका भी सारा जिस्म मफलूज था और सिर्फ अपने सर ही को हरकत दे सकता था। जब इसने ये हालत देखी तो इस पर इक्कतारी हो गई, इसे इस पर बड़ा तरस आया, पूछने लगा आपको किस चीज़ की ख्वाहिश है तो फरमाइए। अब्दुल्ला ने कहा मेरा ख्याल था कि इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होगी कि वो तंदरुस्त हो जाए, यही ख्याल आता है ना। वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ हंसे खेले खाए पिए और ज़िंदगी की खुशियों में शरीक हो। मगर इस मरीज़ ने जवाब दिया मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है, मेरे 5 बच्चे हैं, 7 साल से बिस्तर पर पड़ा हूँ। अल्लाह की कसम मैंने कभी ये ख्वाहिश नहीं की कि अपने बच्चों को देखूँ, इनके साथ सैर व सियाहत के लिए जाऊँ। जिस तरह लोग ज़िंदगी के मज़े लूट रहे हैं मैं भी इन्हीं की तरह याशी करूँ। अब्दुल्ला ने कहा मैं बड़ा हैरान हुआ, इससे पूछा फिर तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? वो बोला मेरा दिल चाहता है कि मेरी पेशानी ज़मीन से लग जाए, यानी सजदा कर सकूं, मैं भी अपनी जबीने नियाज रब्बे करीम के हजूर टेकूं और अपने मालिक को रो रो कर अपना गम सुनाऊं। डॉक्टर रफ़ी एक तबीब की आप बीती सुनाते हैं। वो बताते हैं कि मैं एक मरीज़ के पास गया, वहाँ एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था, सफ़ेद रंग रोशन चेहरा गोया नूर का टुकड़ा हो। तबीब ने बताया कि उसने उसकी फाइल खोली, इसके दिल का ऑपरेशन हुआ था, इसके साथ इसका ब्लड प्रेशर कम हो गया, इस वजह से खून दिमाग की बाज़ शरियानों तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब वो मुकम्मल कोमे की हालत में था, इसके इर्द गिर्द बड़ी बड़ी मशीनें नसब थीं, इसे ऑक्सीजन के ज़रिए मस्नूई सांस फ्राहम किया जा रहा था, यूं वो 1 मिनट में 9 मरतबा सांस लेता था। आप 1 मिनट में कितनी दफ़ा लेते हैं, ज़रा गिनिएगा आज जाकर। अल्लाह अकबर। इसके एक तरफ इसका बेटा बैठा होता था, मैंने इससे इस बूढ़े के मुतल्लिक पूछा ये बुज़ुर्ग कौन है? उसने बताया ये मेरे वालिद साहब हैं। मैंने पूछा इनका चेहरा इस कदर रोशन है, ये वाकई बहुत नेक बुज़ुर्ग लगते हैं। इसने बताया मेरे वालिद अरसा दराज से मस्जिद में एक मौज़िन है। मैंने इस बूढ़े मरीज़ की तरफ़ देखा, अचानक इसका हाथ हरकत करने लगा और साथ ही आंख भी खुलने लगी। मैंने इससे बात करना चाही, मेरी कोशिश नाकाम रही, उसकी हालत पुर ख़तर थी। इसके बेटे ने इसके करीब होकर इसके कान में बात की, लेकिन वो समझने से कासिर था। इसका बेटा कहने लगा, अब्बा जान, अम्मी जान और सारे भाई बहन खैरियत से हैं, मामू जान भी सफ़र से वापस आ गए। इसका बेटा बोलता जा रहा था, लेकिन वो बुज़ुर्ग जूं का तूं था, वो ज़रा भी हरकत नहीं कर रहा था। इधर सांस फ्राहम करने वाला आला मुसलसल 1 मिनट में 9 मरतबा सांस की सहूलत बहम पहुंचा रहा था। अचानक इसका बेटा कहने लगा, अब्बा जान उठिए, मस्जिद आपकी राह तक रही है, फला आदमी के अलावा और कोई अजान नहीं देता, और वो भी अजान देते हुए गलतियाँ करता है। मस्जिद में आपकी जगह खाली है। जो ही मस्जिद और अजान का तذکرہ छिड़ा, बूढ़े का सीना फड़फड़ाने लगा, वो तेज़ तेज़ सांस लेने लगा। इसने ऑक्सीजन मशीन की तरफ देखा, वो 1 मिनट में 18 सांसों का इशारा दे रही थी। बेटे को कोई खबर ना हुई। फिर बेटे ने कहा, मेरे चचा जात की शादी हो गई। वो बूढ़ा एक मरतबा फिर मामूल के मुताबिक सांस लेने लगा। मैंने ये सूरत हाल देखी तो इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, इसके सर के पास खड़ा हो गया। मैंने इसका हाथ हिलाया, आंखें खोली, उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई, हर चीज़ साकिन थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, अपना मुंह इसके कान के करीब करके कहा, अल्लाह अकबर, हैया लसला, हैया ललफला। इधर मैं कनखियों से ऑक्सीजन मशीन की तरफ देख रहा था, सांस की हरकत फिर तेज़ हो गई, वह 1 मिनट में 18 सांसों की निशानदेही कर रही थी। सुबहान अल्लाह, भला ये कैसे बीमार हैं, अल्लाह की कसम, ये बीमार नहीं, बीमार तो हम हैं। इनके दिल हर वक्त मस्जिदों से चिमटे हुए हैं, और इनकी हालत ये है, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुं वला बय्युन अन ज़िक्रिल्लाह, अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईता इज़ ज़कात, यखाफून यखाफून यौमन ततकल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार, लियज़ज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। सूरत नूर की आयतें। वो लोग जिन्हें तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह के ज़िक्र और नमाज क़ायम करने और ज़कात देने से गाफ़िल नहीं करती, वो इस दिन से डरते हैं जिसमें बहुत से दिल और आंखें उलट पुलट हो जाएंगी। वो ये काम इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह इन्हें इनके आमाल की बेहतरीन जजा दे और इन्हें अपने फजल से ज़्यादा दे, और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है, लेकिन है बीमारियों और परेशानियों से महफूज और सही सलामत इंसान। ये कौन है? ये हम है, ये मैं हूँ। अपने आप को सुनाइए ये जुमले, ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करने वाले, ए अल्लाह के अजाब से ना डरने वाले, अल्लाह ने तुझ पर कितने एहसानात किए हैं, लेकिन तू इसके बदले में शब व रोज़ इसकी नाफरमानियाँ कर रहा है। तू कब समझेगा? संभल जा, अभी मोहलत है, तुझ पर रब्बे करीम के इनामात लगातार हो रहे हैं। रब्बे जुलजलाल का दस्ते बख्शिश कभी नहीं थकता, तुझ पर इसके अनगिनत एहसानात की बरसात हो रही है। क्या तू डरता नहीं कि कल तुझे आकबत के किनारों पर हशर की हलचल और हैजान में अल्लाह वख्तहुला शरीक के सामने जवाब दे होना, इन नेमतों का हिसाब देना है? बता, इस वक्त तू क्या जवाब देगा जब वो तुझसे पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, क्या मैंने तुझे सेहत व तंदरुस्ती से नवाजा नहीं था? क्या मैंने तुझ पर रिज़्क़ की फरावानी नहीं की थी? क्या मैंने तुझे सही सालम कान अता नहीं किए थे? तू कहेगा, ऐ अल्लाह, तूने यकीनन मुझे ये सारी नेमतें अता की थी। फिर वो जब्बारों का हार कादरे मुतलक तुझसे सवाल करेगा, तू मेरी नेमतों के मुकाबले में मेरी नाफरमानी क्यों करता रहा, और मेरे अजाब व इंतकाम से बेखौफ होकर गुनाह पर गुनाह क्यों करता रहा? इस वक्त सारे पर्दे छलनी हो जाएंगे, सब भेद खुल जाएंगे, तेरे सारे ऐबो हुनर पूरी मखलूक के सामने या हो जाएंगे, तेरे रूबरू तेरे गुनाह पेश किए जाएंगे। गुनाह की नहुसत किस कदर घनौनी है। एक छोटे से गुनाह की वजह से हमारे बाप आदम को जन्नत से निकाल दिया गया। कौम नूह की तबाही का सबब यही गुनाह बने। कौम आद और समूद को इन गुनाहों ही ने हलाकत में डाला। इन गुनाहों ने ही कौम लूत की बस्ती को उल्टा दे मारा। कौम शुएब पर भी गुनाहों की वजह से अजाब आया। फिरौन और इसकी कौम पर अलमनाक अजाब नाजिल हुए। अब रहा पर नुकीले पत्थरों की बारिश हुई। इसका सबब सिर्फ गुनाह और नाफरमानी की जिंदगी थी। जो आयत बीच में थी वो सूरत नूर 37:38। तो आपके मेरे लिए इसमें क्या सबक है कि इख्तनिम खमसन कबल खम्स, पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानिए, जिसमें एक चीज़ सेहत को बीमारी से पहले, दौलतमंदी को फ़क़र से पहले, फरागत को मशगूलियत से पहले, ज़िंदगी को मौत से पहले। कितने अमालदार हैं हम, अल्लाह ने हमें हर नेमत दी है। ख़ास तौर पे आप देखिए कि इन बीमारों का हाल पढ़कर क्या दिल की गहराई से शुक्र नहीं निकल रहा। और भी 2 घंटे बैठे रहे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, और कहाँ एक इंसान पलट नहीं सकता। और मुझे इस सारे वाक़यात में सबसे ज़्यादा इमोशनल वो लगा कि वो एक ही कुरान का सफ़ा बार बार पढ़ रहा है, पलट नहीं पा रहा। कभी आप कुछ सुन रहे हैं और उसमें रीप्ले का ही बटन, और बार बार वही ऑडियो सुननी पड़े तो घबराहट होती है, दिल करता है आगे कुछ और सुने। इतनी सकत नहीं है उस शख्स में कि वो कुरान का सफ़ा पलटे, फिर भी वो कुरान पढ़ रहा है। आपके मेरे लिए क्या मुश्किल है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि नेमतों के जवाल से बचाए। अल्लाहुम्मा इन्नी औऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिका व तहव्वुली आफियतिका व जमी सखतिका। अल्लाह, नेमतों के पलटने से तेरी पनाह में आते हैं, तेरा इज्तमाई अजाब हम पर ना आ जाए, और अल्लाह ताला हमें इस हर चीज़ को गनीमत समझते हुए इससे बेहतरीन फ़ायदा लेने वाला बना दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।